آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شبانہ بیگم۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر کے پالگھر ضلع میں وادھوان بندرگاہ کا سنگ بنیاد رکھا، جس سے بین الاقوامی جہاز رانی راستوں کے لیے سیدھا رابطہ فراہم ہو سکے گا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے وکست بھارت کی تعمیر میں خواتین کے اہم رول کو اجاگر کیا ہے۔ جولائی کے مہینے میں ملک کے 8 بنیادی شعبوں میں شرح ترقی 6.1% رہی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران اڈیشا، ساحل آندھرا پردیش، تلنگانہ اور چھتیس گڑھ میں بہت تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور پیرس میں جاری پیرالمپکس گیمز میں بھارت نے 4 تمغے جیتے ہیں۔ اونی لیکھرا نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج مہاراشٹر کے پالگھر ضلع میں وادھوان پورٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے ماہی پروری سے متعلق مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے 10 سال میں ملک کے ساحلی علاقوں میں تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی ہے، جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جناب مودی نے کہا کہ سرکار نے بندرگاہوں کو جدید طرز پر ڈھالنے کا کام کیا ہے، آبی گزرگاہیں تیار کی ہیں اور اس کام پر لاکھوں کروڑوں روپے لگائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پرائیویٹ سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا ہے، جسے نوجوانوں کو فائدہ ملا ہے اور نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ آج پوری دنیا کی نگاہیں وادھوان پورٹ پر ہیں، جس سے اس پورے خطے کا اقتصادی منظرنامہ بدل جائے گا۔
اس پورٹ پر 76,000 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جائیں گے۔ یہ دیش کا سب سے بڑا کنٹینر پورٹ ہوگا۔ یہ دیش ہی نہیں، دنیا کے سب سے گہرے پورٹ میں سے ایک مہتوپورن پورٹ ہوگا۔ یہ پورٹ مہاراشٹر اور دیش کے ویاپار کا، اودیوگک پرگتی کا کتنا بڑا کیندر بنے گا۔ اس کھیتر کی پہچان اب تک پراچین قلعوں یعنی فورٹ سے ہوتی تھی، اب اس کھیتر کی پہچان آدھونک پورٹ سے بھی ہوا کرے گی۔
وادھوان پورٹ پالگھر ضلع میں دہانو ٹاؤن کے نزدیک واقع ہے اور یہ ملک کی گہرے پانی کی سب سے بڑی بندرگاہوں میں سے ایک ہوگی۔ اسے بین الاقوامی جہاز رانی راستوں کے لیے سیدھا رابطہ فراہم ہو سکے گا۔ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے میں کم وقت لگے گا اور خرچ بھی کم ہوگا۔ وزیراعظم نے ماہی پروری سے متعلق 218 پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جن کی مالیت تقریباً 1,560 کروڑ روپے ہے۔ اس کا مقصد ملک میں مذکورہ سیکٹر کے بنیادی ڈھانچے اور پیداواریت کو فروغ دینا ہے۔ جناب مودی نے چھترپتی شیواجی اور ان سبھی لوگوں سے معذرت کا اظہار کیا، جنہیں راجکوٹ قلعے پر سرکردہ حکمراں کے مجسمے کے منہدم ہونے سے ٹھیس پہنچی ہے۔
پچھلے دنوں سندھو درگ میں جو ہوا، میرے لیے، میرے سبھی ساتھیوں کے لیے چھترپتی شیواجی مہاراج یہ صرف نام نہیں ہے، ہمارے لیے چھترپتی شیواجی مہاراج یہ صرف راجا مہاراجا راج پروش ماتر نہیں ہے، ہمارے لیے چھترپتی شیواجی مہاراج آراجیہ دیو ہے۔ اور میں آج سر جھکا کر کے میرے آراجیہ دیو چھترپتی شیواجی مہاراج کی ان کے چرنوں میں مستک رکھ کے معافی مانگتا ہوں۔
اس سے پہلے ممبئی میں اسپیشل گلوبل فنٹیک فیسٹ جی ایف ایف 2024 سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت کا فنٹیک شعبہ دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کی جانب سے فنٹیک کے شعبے کو اپنایا جانا رفتار اور پیمانے کے لحاظ سے بے مثال ہے اور دنیا کے آدھے ڈیجیٹل لین دین بھارت میں ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ فنٹیک نے مالیاتی خدمات کو جمہوری شکل میں ڈھالنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ڈیجیٹل لین دین نے متوازی معیشت کی لعنت کو ختم کر دیا ہے اور بینکنگ نظام کی شفافیت میں اضافہ کیا ہے۔ وزیراعظم مودی نے زور دے کر کہا کہ فنٹیک کے ذریعے بھارت میں لائے گئے بدلاؤ کا اثر صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس پہل کا سماجی اثر دور رس ہے۔
पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में 31 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश हुआ है। 10 साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था, लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए।
इस मौके पर खिताब करते हुए भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत इस वक्त बदलाव के उस दहाने पर खड़ा है जहां टेक्नोलॉजी हर शहरी की ख्वाहिशात की तकमील का अहम तरीन वसीला होगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत उस वक्त तक एक तरक्कीयाफ्ता मुल्क नहीं बन सकता जब तक कि उसकी तरक्की में खवातीन की शमूलियत न हो। नायब सदर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज में विकसित भारत में खवातीन का रोल के मौजू पर तबादला ख्याल के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की तामीर में खवातीन अहम तरीन फरीक हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां और खवातीन बेशबहा तवानाई और सलाहियतों की हामिल हैं। उनके ज्यादा से ज्यादा शराकतदारी के लिए एक इको निजाम तश्कील दिए जाने पर भी उन्होंने जोर दिया। नायब सदर जनाब धनखड़ ने खवातीन की क्यादत वाले बाख्तियार बनाने के अमल पर जोर दिया। कोलकाता के आबरूरेजी और कत्ल वाके पर दुख का इजहार करते हुए नायब सदर ने कहा कि जिस मौशरे में खवातीन और लड़कियां खुद को महफूज न महसूस कर सकें, ऐसे इसे महज़ब मौशरा नहीं कहा जा सकता।
जहाँ औरतें लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, वो समाज सभ्य समाज नहीं है, वो डेमोक्रेसी कलंकित है, वो हमारी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है।
उमूर दाखिला और इमदाद बहामी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि भारत को ऑर्गेनिक गजाई अशिया तैयार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाने के वजीर आजम के नजरिए में इमदाद बहामी इदारों का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती की तहरीक एक अहम मरहले पर पहुंच गई है। जनाब अमित शाह ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब ऑर्गेनिक अशिया के बारे में आलमी सतह पर बेदारी पैदा हो गई है और इन अशिया के लिए एक बड़ी बैन अलावामी मार्केट है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक अशिया के मुनाफा बख्श कारोबार में भारतीय किसानों की हिस्सेदारी में इजाफा होगा और इस तरह उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी।
राष्ट्रीय सरकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और अमूल, ये दो मिलकर देश भर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली लेबोरेटरीज प्रयोगशालाओं का एक जाला बुनने वाले, जो ऑर्गेनिक भूमि का भी परीक्षण करेंगे और प्रोडक्ट का भी परीक्षण करेंगे कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है।
वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुतालिक मुश्तरका कमेटी की मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई ताकि मुख्तलिफ मुतालिका इदारों और अफराद से उनकी तजवीजें और राय हासिल की जा सके। लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल की सरबराही में यह कमेटी तश्कील दी गई थी। मजकूरा बिल का मकसद खामियों को दूर करना और वक्फ इमलाक के बंदोबस्त और इंतजामिया की सलाहियत को वसअत देना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जुलाई के महीने में मुल्क के 8 बुनियादी शोबों की शरह तरक्की 6.1% रही। कॉमर्स की वजारत की जानिब से आज जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक 8 बुनियादी शोबे की सनतों के मजमू इशारे से कलीदी शोबों की पैदावार की अक्कासी होती है। इनमें सीमेंट, कोयला, खाम तेल, बिजली, कीमियावी खाद, कुदरती गैस, रिफाइनरी अशिया और स्टील शामिल हैं। स्टील की तैयारी में शरह तरक्की 7.2% रही, जो पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा है। सीमेंट के शोबे में शरह तरक्की 5.5% रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता 4 महीने में सबसे ज्यादा है। इसे तामीराती सरगर्मियों में इजाफे की अक्कासी होती है। पेट्रोलियम की पैदावार में 6.6% का इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता 8 महीने में सबसे ज्यादा है। जुलाई के महीने में कोयले की सनत की पैदावार में 6.8%, जबकि बिजली की पैदावार में 7% का इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए की मुनासिबत से जदीद तर्ज की वंदे भारत एक्सप्रेस तीन रास्तों पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। इनमें मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरू और चेन्नई नागरकोइल शामिल हैं। इन नई वंदे भारत रेलगाड़ियों से आवाम को सफर करने का आलमी मेयार का वसीला फराहम होगा और रफ्तार के साथ साथ सफर आरामदेह भी होगा। इससे तीन रियासतों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों को सहूलत होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम में डिस्ट्रिक्ट अदलिया से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट के क्याम के 75 बरस मुकम्मल होने के तनाजुर में एक डाक टिकट और यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुनक़िद की गई इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट अदलिया मामलात से मुतालिक 5 इजलास होंगे, जिनमें बुनियादी ढांचा, शमूलियत वाले कोर्ट रूम्स, अदालती सिक्योरिटी, केस मैनेजमेंट और तरबियत से मुतालिक मामलात शामिल हैं। इफ्तिताही प्रोग्राम में चीफ जस्टिस, कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर और अटॉर्नी जनरल शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल के रोज बरूनी और सिंगापुर के तीन दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में नामनिगारों को बताया कि जनाब मोदी बरूनी के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया की दावत पर अगले महीने की 3 तारीख को बरूनी दारुस्सलाम जाएंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का उस मुल्क का यह पहला बाहमी दौरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनाब मोदी का यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है कि जब भारत और बरूनी के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने के 40 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जनाब जायसवाल ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे मरहले में बुध के रोज सिंगापुर पहुंचेंगे। वो सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म लॉरेंस वांग की दावत पर वहां जा रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान ओडिशा, साहिली आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर गुजरात में कच्छ के खित्ते पर हवा के गहरे दबाव का हल्का मगरिब की समत बढ़ रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक इसके मगरिब की समत बढ़ने और कच्छ और पाकिस्तान साहिल के नजदीक शमाल मशरकी बहरे अरब में पहुंचने और अगले 6 घंटे में समुद्री तूफान की शक्ल अख्तियार करने का इम्कान है। इस तूफान से भारतीय साहिली इलाके मुतासिर होने का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि इसके अगले 2 दिन के दौरान इन इलाकों से दूर आगे बढ़ने की पेशगोई की गई है। झारखंड के साबिक वजीर आला चंपई सोरेन आज सुपहर रांची के ध्रुव मैदान में मुनक़िद एक तकरीब में बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले चंपई सोरेन ने जोर देकर यह कहा था कि वह कबायली पहचान और बका को बचाने के खातिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसे बांग्लादेश से बहुत ज्यादा दरअंदाजी की वजह से रियासत के संथाल परगना खित्ते में खतरा लाहक है। भारत ने पेरिस में जारी पैरालंपिक्स गेम्स में 4 तमगे जीते हैं। इनमें 1 सोने, 1 चांदी और 2 कांसे के तमगे शामिल हैं। खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में निशानेबाज अवनी लेखरा ने सोने का, जबकि मोना अग्रवाल ने कांसे का तमगा जीता। अवनी लेखरा पैरालंपिक्स में 2 सोने के तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून एथलीट बन गई हैं। मोना अग्रवाल ने गेम्स में पहली मरतबा हिस्सा लेते हुए मुल्क के लिए पहला तमगा हासिल किया। मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में मनीष नरवाल ने 234.7 पॉइंट स्कोर करके चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि खवातीन की 100 मीटर दौड़ में प्रीति पाल ने कांसे का तमगा हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा को पेरिस पैरालंपिक्स में पैरालंपिक्स 2024 के R2 खवातीन 10 मीटर एयर राइफल SH1 मुकाबले में सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने उनकी बेपनाह लगन और मुल्क को फख्र के मौके देने के लिए उनकी सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने तीरंदाज मोना अग्रवाल को भी पेरिस पैरालंपिक्स में खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल SH1 मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। ड्यूरिन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच कल शाम कोलकाता में मोहन बागान और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाधवान बंदरगाह का संगे बुनियाद रखा, जिससे बैन अल-अक़वामी जहाजरानी रास्तों के लिए सीधा राब्ता फराहम हो सकेगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने विकसित भारत की तामीर में खवातीन के अहम रोल को उजागर किया है। जुलाई के महीने में मुल्क के 8 बुनियादी शोबों में शरह तरक्की 6.1% रही। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले दो तीन दिन के दौरान ओडिशा, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है और पेरिस में जारी पैरालंपिक्स गेम्स में भारत ने 4 तमगे जीते हैं। अवनी लेखरा ने सोने का तमगा हासिल किया। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।